कर करके चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने पानी उठाया और कृष्ण कृष्ण मंत्र करके छोड़ दिया। सब हाथी कृष्ण 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 कर गंडार बाघ भालू चैतन्य महाप्रभु पूरी से आ रहे हैं धीरे धीरे वृंदावन में। आंखों से आंसुओं की धारा गिर रही, मेरे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कुठा है कृष्ण, कुठा है कृष्ण, के लिए मेरे प्राण विदीर्ण हो रहे हैं। और समय कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं बाघ भालू हाथी गंडार सर्प हिरण सब एक साथ में उनके पीछे पीछे डोलते हुए कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं। जिधर नजर घुमाई उधर में कृष्ण कृष्ण, ये गुरु है। ऐसे गुरु को चाहिए जो कृष्ण में दम सराबोर जिसकी मति है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियातांकुतो भी यदि लभ्यते तत्र लौलम अपि मूल्य में कलम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। जन्म कोटि कोटि की सुकृति से साधु संग होता है, यह बात तो ठीक है, किंतु यह प्रेममयी जो रसमयी जो वृंदावन की जो भक्ति है, गोपियों की भक्ति, ये कोटि कोटि सुकृति देने से भी नहीं होगा। इसलिए गुरु यदि वैसा मिल गया रसी कृष्णमय जिसका चित्त है, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता, बल्कि कृष्ण को भी हटा करके राधे 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 कहता है, समझ गो जब कृष्ण उसकी मुट्ठी में आ गए, कृष्ण से मांगना नहीं पड़ेगा भक्ति। ऐसे रसी भक्तों का गुरु का जब तक संग नहीं होगा, भक्ति रसमयी वृंदावन वाली भक्ति नहीं मिल सकती है, वैकुंठ वाली हो सकती है, कुछ मिल जाए साधन का, ऐसा साधन होना चाहिए। साधन किस लिए, मेरे अंदर में कृष्ण के प्रति भाव आ जाए, भाव को लक्ष्य करके जब भक्ति की जाती है साधन किया जाता है। साधन क्या, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद महाराज जी आगे अभी आने वाला है, मैं सबको एक तरह से विहंगम दृष्टि से आप लोगों को बतला रहा हूँ, कुछ को सार कीजिए बतला रहा हूँ। प्रहलाद महाराज जी ने कहा श्रवणम, भगवान की कथाओं को श्रवण करो। कौन भगवान, कृष्ण, उनकी अद्भुत अद्भुत कथाओं को सुनो। गोपियों के साथ में कृष्ण की जो लीलाएं हुई अंतरंग और सबसे गंभीर लीलाएं हैं, कोटि कोटि जन्मों में ऐसे संतों का गुरु का यदि हो गया, गुरु से दीक्षा लिया, दिव्य ज्ञान हुआ, पाप सब दूर हो जाएंगे, तब भक्ति का साधन आरंभ होगा। तो श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन अर्चन दास्य सख्य निवेदन, ये सब साधन है। यदि इतना नहीं बन सकता तो साधु संग, भागवत श्रवण, मथुरा बार माने वृंदावन इत्यादि में बार, श्रीमूर्ति श्रद्धा है श्रीमन, साधुओं का संग करो, रसिक वैष्णवों का, और उनके मुख से श्रीमद भागवत सुनो, और उनके माँ मुख से भगवान का कीर्तन सुन करके तुम भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, समस्त मंत्रों का सार नाम है ये सब, ये मंत्र करो और भगवान राधा कृष्ण की सेवा करो। पंचायती में मत जाओ, एक निष्ठा होनी चाहिए, एक निष्ठा जो भगवानों का भी भगवान है, स्वयं भगवान कृष्ण है। इसलिए भागवत ने कहा देखो संदेह मत करो, एति च अंश कला, जितने भी अवतार हैं वो अंश और कला है, कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण स्वयं भगवान है, उनका भजन करो यदि कल्याण चाहते। सद्गुरु यही बतलाएगा, और दूसरे बतलाएंगे यज्ञ करो, तपस्या करो, सोमवार करो, मंगलवार करो, बुधवार करो, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, संतोषी मैया इत्यादि सबकी कहेगा। जगत को ठगना नहीं चाहते, इसलिए सुख गुरु कहेगा जय राधा कृष्ण के चरणारविंद में एकांतिक रूप से आश्रय ग्रहण करो। इसलिए सबसे पहले साधु संघ, साधु संघ में जाने से कहा जय सुख गुरु बतला देगा ये लक्षण क्या है, समस्त शास्त्र जानता है किंतु स्वयं भजन नहीं करता, वो गुरु नहीं है। एक भागवत के वक्ता थे, कहीं भागवत पाठ कर रहे थे मथुरा या किसी जगह, तो वो उनकी स्त्री भी सुन रही थी, अम्बरीश महाराज की कथा सुनी और सुन करके एक सूची जैसे आज से मैं एकादशी करूंगी, तो जब भागवत सुन करके आई, उसके पति ही भागवत पाठ कर रहे थे, तो उसने घर में आज कुछ बनाया नहीं, फल मूल तैयारी करके रखी, ये पति आएंगे और हम दोनों खाएंगे, पति ने ही ऐसा कहा। तो घर आए तो उसके पति ने पूछा जैसे रसोई बनाई,
तो रसोई क्या बनाती, आज तो एकादशी है तो कुछ भी नहीं बनाए, अभी जल्दी से जाओ पूरी बनाओ और आलू का दम बनाओ और अरहर चना की दाल बनाओ अच्छी तरह से, नहीं तो अभी तुम्हें पीट करके घर से बाहर कर दूंगा। अरे आपकी करनी और कथनी में किन तरह अंतर, आज एकादशी है और आप मांग रहे हैं और दूसरों को उपदेश दिया, ऐसे गुरु से नहीं होगा। जो स्वयं भगवान का नाम नहीं करते, आचरण नहीं करते, शुद्ध भक्ति नहीं करते, ऐसे गुरु से लाख जन्म में भी लेने से नहीं। इसलिए शुद्ध भक्तों से मंत्र लेना चाहिए, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए साधु संघ भागवत श्रवण मथुरा वास वृंदावन में बात करो बीच बीच में, नहीं हो तो मन से भी वृंदावन में सोचो, मैं वृंदावन जब भजन करने बैठो, बहुत गुप्त रहस्य ये सब बतला रहा हूँ, घर में बैठो सोचो जब मैं वृंदावन में कहाँ पर हूँ, जमुना के किनारे, जमुना कल कल बहरे, उसमें कमल के फूल खिले हुए भौरे गुंजार कर रहे हैं, मानो कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, कोयल कुहक करके राधे राधे और कभी कृष्ण कृष्ण कह रही है, मयूर नाच रहे हैं, फूलों की सुगंध से एकदम चारों तरफ में सुगंध फैल गया। उसी समय में देखा जिसे राधा कृष्ण एक कदम्ब वृक्ष की छैया में सुंदर सोने के सिंहासन पर बैठे, वहां रह करके वृंदावन में भजन करो, नहीं चले जाओ गोवर्धन में कुसुम सरोवर के पास में बैठ जाओ मन ही मन में, गोवर्धन की परिक्रमा दे डालो मन ही मन में और वहां पर बैठ करके सोचे जी वहीं पर मैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राधे राधे श्याम श्याम इत्यादि करना है, वृंदावन में बैठ करके करो, घर में बैठ करके मत करो। यदि वहां पर नहीं जा सकते हो तो मन ही मन वहां तो जा सकते हो, उसमें पैसा किराया का भाड़ा नहीं लगेगा, किंतु मन को ऐसा प्रस्तुत और भागवत की कथा सुनो। इतना भी नहीं होता है, बस एक काम करो, साधुओं के आश्रम में सदगुरु से दीक्षा इत्यादि लेकर घर में बैठे बैठे ही बस केवल एक नाम करो, एक नाम के बल पर भगवान सभी मिल जाएंगे और सब साधन उसमें हो जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। सदगुरु का केंद्र पदार्थ करना पड़ेगा, साधुओं का श्रम भागवत जरूर सुनना पड़ेगा और उसमें मुख्यता रहेगी किसकी, बस एक हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ये वृंदावन में जाने का तरीका है, ये सब साधन है। अब हम चलते हैं, ये तो हुआ भक्ति, इस तरह से शुद्ध भक्ति का साधन करेंगे। अब थोड़ा सा उदाहरण देकर के सबसे पहले अभी ध्रुव जी का चरित्र उन्होंने सुनाया। ध्रुव जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए नारद जी के पास में गए और उनसे मंत्र लेकर के 6 महीने तक ऐसा कठोर साधन किया जो पानी तक भी नहीं पिया, हवा तक भी नहीं ली और भगवान उनके सामने में खड़े हो गए। ध्रुव जी किस लिए भगवान का भजन किया इसको समझिए पहले, किस लिए? भगवान प्रसन्न, भगवान प्रसन्न होकर के क्या हो, हमको ये राज्य जो है पिताजी वाला ये मिल जाए ना? तो ये हो गया अन्नाभिलाष, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो किया किंतु उसका फल मांग लिया अपना, मैं राज्य का मालिक हो जाऊं। प्रभु ने कहा 36,000 वर्ष तक तुम पृथ्वी का निष्कंटक राज्य तुम भोगेगा। यह भगवान अंतर ध्यान हो गए बर देकर के, अब बड़े रोने लगे, हाय हाय मैंने क्या किया, मैं तो पत्थर ढूंढ रहा था कांच का टुकड़ा और मुझे चिंता मनी भगवान मिल गए और उनसे मैंने ये कांच का टुकड़ा मांग लिया, हाय मैं वंचित हो गया, प्रभु अब नहीं चाहिए, अब हमको आप वैकुंठ में गति देकर के अपनी सेवा हमसे करें। कहे नहीं अब 36,000 वर्ष तुमने जो थोड़ी सी गलती की उसके लिए 36,000 वर्ष संसार में रहो, इसलिए इनकी भक्ति शुद्ध नहीं है, ये कुछ कर्म मिश्रा भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति नहीं। कृष्ण के लिए भजन नहीं किया था, कृष्ण के लिए किया किंतु उसने मांग लिया दूसरा फल, इसलिए भक्ति नहीं हुई शुद्ध, इसलिए वो रह गए 36,000। इसके बाद भी उनको जो लोक मिला वो वृंदावन नहीं मिला, वैकुंठ नहीं मिला, इस जगत में ही कोई स्थान नहीं। इसके बाद जब आगे चलेंगे तो अजामिल का उपाख्यान अब आने वाला है, कल अच्छा अजामिल ने किया भगवान का नाम, अनामिल ने किया नहीं, गलती से भूल से अज्ञानता से ही अपने छोटे बेटे का नाम जो बेचा से उत्पन्न हुआ व्यभिचारिणी पूर्णचंद्री से उसका नाम नारायण रख दिया था। तो ब्राह्मण बड़ा सूखा और अच्छी स्त्री से शादी हुई, उसके बच्चे हुए, उसके माता पिता की वो सेवा करता था, रोज हवन इत्यादि कार्य करता था, किंतु एक शुद्राणी उभी पुंश चला माने वेश्या से भी अधिक गई और उसके फेर में पड़ गया जाल में और सब कुछ जलांजलि देकर के अब डकैती चोरी करने लगा। ऐसा कोई पाप नहीं जो नहीं करता, किंतु बेटे का नाम रख दिया। ये नारायण नाम रखना ही उसके लिए महा सौभाग्यवान हुआ। जब मृत्यु हुई तो उस समय में अभ्यास बसता नारायण नाम मुख से निकल गया बेटे के लिए, भगवान के लिए नहीं। किंतु हुआ क्या, प्रभु ने अपने नाम के बदले नारायण चार दूत भेजे शंख चक्र गदा पर और उन्होंने जम के दूतों को मार करके भगा दिया, उसको जीवित कर दिया। जब चरण छूने के लिए दौड़ा तो ही भगवान अंतर, वो चारों भगवान के दूत अंतर ध्यान। थोड़ी देर के बाद नहीं उठा, अरे नारायण नाम भूल से मैंने कहा और मृत्यु पर मैं विजय पा लिया, अब मैं भगवान का नाम शुद्ध रूप से पहले अपने बेटे के लिए स्त्री के लिए करता था। मां व्यभिचारी था, लंपट झूठ बदमाश था, डकैत चोर खूनी था, अब मैं नहीं करूंगा। हरिद्वार चला गया और जाकर के वैष्णव के संत में संग में रह करके भगवान का नाम नारायण नारायण। फिर वही दूत आए और उनको ले गए। ये तो नाम का फल देखो, किंतु गुरु ठीक नहीं मिला। गुरु कौन मिले, मिले थे उनके चारों गुरु ही, गुरु वही हैं, किंतु इस जगत में साधन करते समय संग वैसा नहीं मिला, नहीं तो ब्रज में जाता। अब इसके बाद में आएगा प्रहलाद महाराज जी का उपवास। भगवान ने खुद कहा नृसिंह जी ने, कुछ बर मांगो। मैं बनिया नहीं, बनिया लोग क्या करते हैं, बनिया लोग दुकान पर बहुत सी चीजों को रखते हैं, उनके पास में डंडी भी तौलने की होती है, कहा जे 5 रुपया किलो है चीनी, 10 रुपया आजकल कितनी कितनी है, 12 रुपया 13 रुपया या 20 रुपये किलो, कहा जे 20 रुपया है, सब दुकानों में यही रेट है, मेरी चीनी अच्छी है और जब चीनी तौल लेगा तो डंडी मार करके कुछ उसमें ले लेगा और पैसा लेकर के चीनी देगा। तो मैं बनिया नहीं हूं जो मैं पैसा लेकर के कोई चीज दूंगा। मैं आपकी भक्ति इसलिए नहीं की थी, बनियागिरी के लिए नहीं कि आपसे कुछ मांग लूंगा और आप दे देंगे। प्रभु हमारे अंदर में मांगने की कामना है वो सब खत्म हो जाए। कृष्ण फिर भी तुम मांगो, भगवान ने कहा नृसिंह जी ने, मेरा दर्शन अभ्यर्थ है, जरूर काम करेगा। उन्होंने कहा अच्छा तब एक बात कीजिए, हमारे पिताजी ने जिसको मैंने पिता माना, पिता तो आप ही हैं परम पिता, क्यों आपकी और मेरी बहुत उन्होंने शत्रुता की, उद्विग्न किया, इसलिए इनकी गति हो जाए। अरे काजे बेटा ऐसा चिंता मत करो, जो भगवान का भजन करता है साधारण रूप में उसके 7 पुरुष तर जाते हैं, ऐसे जो मध्यम होता है उसके 14 पीढ़ी और जो तुम्हारे जैसे भक्त हों उनकी 21 पीढ़ी बिना भजन के ही तर जाती है। तो तुम्हारे पिताजी तर गए हैं क्योंकि वो जय विजय है ना, लोग तो समझते नहीं है ये कौन है, तो वो तो तर गए हैं, उनके लिए चिंता मत करो, फिर मांगो कुछ। तो उन्होंने कहा जी प्रभु हमको ऐसा मत कीजिए, नहीं नहीं तुम मांगो। उन्होंने कहा जी जगत के जितने जीव आपको भूल करके संसार में दुखी हैं और करोड़ों जन्म से दुखी हो रहे हैं, तिताप में जल रहे हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनका सब दुख सारे हमारे सिर पर आ जाए, मैं जन्म जन्मान पर भोग करूं और उन लोगों को भक्ति हो जाए और वो लोग बैकुंठ को चले। ऐसे प्रहलाद महाराज भगवान का नाम कीर्तन करते थे, बचपन से ही भगवान का भजन करते थे, दूसरों को भी शिक्षा देते थे। अजामिल ध्रुव जी ये दूसरों पर कृपा कर नहीं किए, किंतु इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के असुर बालकों से लेकर के सबको कृपा की भगवान का भजन करो। वो साधु साधु नहीं है जो कि दूसरों को भव सागर से तारने की चेष्टा नहीं करता, अपने लिए तो सभी खाते हैं, दूसरों को खिलाए सब न, इसलिए मैं भजन करता हूँ, दूसरों को भी भजन कराऊं कृष्ण का, ये बड़ी भारी साधुता है। प्रहलाद महाराज जी ऐसे थे, इनसे भी बड़े वृत्तासुर का उपाख्यान अभी आने वाला है, वृत्तासुर इनसे भी श्रेष्ठ, प्रहलाद महाराज जी इनसे भी श्रेष्ठ, कैसे श्रेष्ठ, ऐसे श्रेष्ठ हैं वृत्तासुर जी। लड़ाई के मैदान में भगवान से प्रार्थना करते हैं, मैं तन से मन से वचन से आपकी सेवा करूं, उन्हीं ने उन्होंने बताया कि गोपियों की जैसी भक्ति है ऐसी हमारी भक्ति आपके चरण में हो। अजात पक्षामियो मातरम खगा, जैसे पक्षी जिसको अभी डैने नहीं उठे हैं, पंख नहीं आए हैं, वो माता के लिए सब समय छटपटाता है, मैया कुछ लेकर के आएगी, हमारी रक्षा करेगी। किंतु अपने लिए वो तड़पता है, मैया के सेवा के लिए नहीं। एक बछड़ा रोता है नहीं? किस लिए? मैया नाते मिलते ही वो स्तन में पहुंच जाता है, दूध पीता है। मैया के लिए बछड़ा नहीं रोता, जो ही उसका पेट भर जाता है दूध से, मैया की तरफ में देख करके इधर उधर कूदने लग जाता है। बेटों को भी देखिए, खूब स्नेह से चिपका करके उसको गोदी में दूध पिलाएं, और जब पेट भर जाएगा तो क्या करेगा, गोद से उतर करके भागेगा, इधर पकड़ने जाओ भी पकड़ में नहीं आएगा। और यदि दो पंख लगा दिए, कौन सा विवाह कर दिया ना, और कुछ नौकरी चाकरी करा दो तो देखो मजा, उड़ करके तुम्हारे पास में आएगा, नहीं लौट करके, है ना। तो इस चीज को समझो, इसलिए कहते हैं ये भी स्वार्थ है। किंतु प्रेयसी प्रिया के लिए, प्रिय के लिए, प्रेयसी माने विवाह का भी संबंध नहीं, प्रेम केवल उसमें है। जिस प्रकार से प्रिया प्रियतम के लिए, उनके लिए नाम को पुकारती है, उनके लिए रसोई बनाती है, खिलाती है, और कुछ नहीं चाहती, उनकी बातें ही सुनने में और कहने में उसको अच्छा लगता है, सेवा भी करती है। हे प्रभु, मैं आपकी उसी प्रकार से सेवा कर सकूं, ये भक्ति है। किंतु इनसे भी बढ़ करके जदुबल, ये अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी की भक्ति बहुत है। कृष्ण ने किसी का रथ नहीं चलाया, नौकरी नहीं की, अर्जुन का रथ चलाया, द्रौपदी का तीर हरण किया। द्रौपदी जैसे काटी है वैसे उठते बैठते हैं, इनकी भक्ति बहुत ऊंची है। इनसे भी जदुवंशियों की द्वारकापुरी में सब लोगों की भक्ति है, उसमें उद्धव जी सबसे श्रेष्ठ हैं। किंतु उद्धव जी से भी गोपियों की भक्ति बहुत, इन सबका जो कुछ देखते हैं, ये बिना साधु संग का नहीं हुआ, ध्रुव का हुआ नारद जी के संग से, प्रहलाद जी का हुआ नारद जी के संग से, वृत्रासुर का कैसे हुए नारद और पर्वत ऋषि के संग से, इसी तरह से ये जगत में साधन में ऐसा बिना साधु संग के, बिना गुरु के नहीं होगा, ये चीज है। इसलिए साधन होना चाहिए। भाव अवस्था बिल्ल मंगल का आप लोग नाम नहीं जानते हैं, चिंता नाम की, चिंतामणि नाम की एक बेस्या थी, उस पर आसक्त हो गया, अपनी स्त्री को बाल बच्चों को छोड़ करके अपने पिता के साधन के दिन में गठरी में बांध करके मिठाई लड्डू सब, और चल पड़ा अपनी बेस्या को देने के लिए ब्राह्मण जेमे ने की। जब देखा रात हो गई है, पानी लबालब नदी में भर रहा है, बड़ी तीव्र गति से धारा प्रवाह बह रहा है पानी, कैसे पार जाऊं, बच्चा की परवाह नहीं इसने की, और नदी में कूद गया। इसने में देखा ये कोई चीज बह रहा है, लकड़ी समझ करके उस पर बैठ गया और खेते खेते उस पार में गया। उधर देखा कि वर्षा जोरों से हो रही है, अंधकार, चिंतामणि चिंतामणि पुकारा किंतु कोई शब्द नहीं किया। तो वो धीरे धीरे चारों तरफ घर के तरफ में ढूंढ रहा है, कैसे ऊपर जाऊं और उसके घर में जाऊं। देखा एक रस्सी झूल रही है, रस्सी को झूलती हुई को पकड़ लिया, और जब ही ऊपर पहुंचा धड़ाक से नीचे गिर गया। चिंतामणि, अरे क्या आवाज हुई, देखा अरे ये तो बिल्ल मंगल है। उसको घर में ले गई, अपने दासियों की सहायता से उसे आग सफाया, गीले वस्त्र को हटा करके सूखे वस्त्र दिया। जब उसको होश हुआ था, जैसे इस हर शाम रक्त मांस के शरीर के लिए इतना तुमको प्रीति, तो भगवान के लिए प्रीति तुम्हारे अंदर में नहीं है। अरे भगवान के लिए देखो, हम उद्धार नहीं तुम्हारा कर सकती, तुम आए कैसे। एक लकड़ी थी, उसको नौका में उसके ऊपर में बैठकर चलो तो देखे। तो सवेरा हुआ, देखा जो वो मरा हुआ चार पांच दिन का सड़ा हुआ शव, जिसे दुर्गंध निकल रही, कोई निकट नहीं जा। अरे घर में कैसे आया, रस्सी पकड़ करके आया। देखें तो देखा जी काला सर्प ऊपर से झूल रहा था, उसको सांप को भी, काल को भी, उस स्त्री के आसक्त में मोह में ऐसा हुआ। इसका एक लाख का एक भाग भी भगवान के चरणों में यदि आसक्ति हो गई, उसका जीवन सुधर जाएगा। अंत में भगवान ही उसको लेकर के अपने आंख को फोड़ लिया। कहीं जब छोड़ करके जाने लगा तो रास्ते में कोई एक नवेली विवाहित कोई स्त्री मिली, पानी भर रही थी, उसका दूर रूप देख करके फिर ललच गया। उसने जरा पानी पिला देना, वो तो पानी की प्यास नहीं, उसको तो मोह की प्यास है। उसने पानी पिला दिया, अपने घर चली, उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दरवाजे पर गया तो उसका पति वहां पर मिला, उसने कहा जी कहिए आपके क्या, अब साधु का जैसा रूप हो गया है, दाढ़ी बढ़ गई और ये केस बढ़ गए हैं। उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी से ये जो गई अपनी लड़की से मिलना चाहता, उसको बुला दो। उसने एकदम निश्चल रूप से उसको बुला दिया। वो आई, उसने कहा क्या चाहती हो, क्या चाहते हो, भिक्षा लोगे, रोटी लोगे? कहिए रोटी नहीं, तुम अपने ये केस वाली जो सुई है लगाने वाली उसको दे दो। उसने दो निकाल करके दे, उसने ले लिया, वो समझी नहीं और अपनी आंखों में उसको घुसे लिया। ये आंखें सब तुम्हें धोखा देती हैं, इसलिए रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, आंखें नहीं रहेगी और बस एक मात्र कृष्ण में अपने चिंता को लगा लूंगा। इसके बाद में वो कृष्ण कृष्ण कहते हुए वृंदावन की तरफ, एक बच्चा छोटा सा मीरा सांवला साहब देखा तो नहीं, ये कैसा बड़ा मधुर उसका शब्द, बाबा कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे बेटा? मैं वृंदावन जा रहा हूँ। अरे मैं भी तो वृंदावन, हमें लेता चलेगा? तो क्यों नहीं लेता चलूंगा? अच्छा अपनी लठिया दे दो, बस लठिया लेकर के। थोड़ी देर बाद में कहता है अरे वृंदावन बाबा आ गया। अरे आ गया? और वो अपनी भावना से कृष्ण को देख करके मनी मन में और श्लोक रचना करता जाता था, उसी का नाम हुआ कृष्ण करणामृत, कृष्ण के कानों के लिए परमामृत। अभी सभी भक्त लोग पाठ कर रहे हैं, यदि भक्त होना चाहते हैं उनके ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें जब वहां पर आ गया तो उसने लठिया छोड़ करके चला गया। ऐसे ही ये सब साधक हैं, बिल्ल मंगल इत्यादि साधन से तो फिर भावावस्था आती है। भावावस्था से जब प्रेम होता है तो प्रेम होने के बाद में कृष्ण मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं। गोपियों का जो उदाहरण दिया, ये उद्धव का जो उद्धव दिया और द्वारकावासियों का दिया, ये साधक नहीं है, ये सिद्ध हैं, इनकी सिद्ध सेवा है। उसी की लालसा से हम जब साधन करेंगे तब वो साधन साधन है, वो भाव भाव है। इन चीजों को समझ करके भागवत को समझने की चेष्टा करें तो भागवत की कथाओं को समझ सकें। सभी तुलसी के पत्ते बराबर हैं, बात तो ठीक है, किंतु सभी भक्त लोग बराबर नहीं हैं, सभी साधक लोग एक नहीं हैं, उनमें तारतम्य होता है, कोई छोटे बड़े होते हैं। अभी जो ध्रुव है प्रहलाद के समान नहीं है, प्रहलाद चित्रकेतु के समान नहीं है, चित्रकेतु उद्धव के समान नहीं है और उद्धव गोपियों के समान नहीं है। हमको भक्ति करनी है ब्रज की गोपियों की, यदि ये भक्ति पानी है तो भागवत की कथा। गोपियों जैसे कैसे उन्होंने कृष्ण की सेवा की, आराधना की, ऐसे आराधना करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि आज यहीं तक रहे, करीब डेढ़ घंटा पौने दो घंटा हो गया, इसलिए अभी थोड़ा सा यदि होगा तो शुभानंद ब्रह्मचारी जी बोलेंगे कि अब समाप्त करेगा। और फिर कल ऐसे ही, जैसे आज कल आया था तो मुझे कुछ लग रहा था ये सभा मंडप में लोग बहुत कम हैं, आज कुछ खुशी है कि आज कुछ भर रहा है। मैं चाहता हूँ कि इतने लोग आए कि इसमें जगह न मिले। कल अपने अपने सभी साथियों को, सहेलियों को, अच्छे अच्छे लड़कों को जो ये नए नए सुने, उनको संस्कार भी समय आएगा तब देश यथार्थ में समृद्ध होगा। लड़ाई झगड़ा मामला मुकदमा नहीं रहेगा श्रीमद भागवत सुनने से, यथार्थ कृष्ण के प्रति प्रेम आएगा, इसी से हमारा कल्याण होगा। इस चीज को समझ करके हम लोग भागवत श्रवण करें। आज यहीं पर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। कृष्ण सबके हृदय में शुद्ध भक्ति दें, ये श्रीमद भागवत सबके हृदय में शुद्ध भक्ति दें, आप लोग शुद्ध भक्ति को पहचान सकें और सत्संग करते हुए गुरु पदार्थ करके शुद्ध रूप में कृष्ण की तरफ में आगे जाए। गौर प्रेमानंदे माइक।